अब हजरत नूह की ही कहानी चल रही थी, अल्लाह ने कहा कि इनको कश्ती में सवार कर लो, लेकिन अब आगे देखिए कितना बड़ा सदमा, औलाद का गम देखने लगे हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम। टॉपिक क्या है? 42 से 43 का, बुरी सोहबत कुफर पर माइल कर देती है, यानी बैड कंपनी आपके बच्चों को बिगाड़ सकती है। वही तजरी बिहिम फी मौज, और वो कश्ती चल रही थी मौजों में, और मौजें कितनी बड़ी थी, जैसे पहाड़ होते हैं। वह नादा नूह इब्नहू, और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा। ज़रा सा दर्द के साथ महसूस कीजिएगा, अल्लाह ना करे किसी को औलाद की बिगाड़ का कोई गम मिले, लेकिन हजरत नूह जैसा गम तो शायद ही किसी को मिला हो। वका नफ़ी मासिलिन, वो तो किनारे पे खड़ा था, कहने लगे या बुनैयर कब माना, ओ बेटे कम हेयर, हमारे साथ सवार हो जो इस कश्ती में, वला तकुम माल काफिरीन, काफिरों के साथ ना हो। इस जुमले से उलमा कहते हैं कि बुरी सोहबत ही, बेटा काफिर कंपनी में आ गया, यानी बैड कंपनी ने बेटे को बिगाड़ दिया। अब बेटे का जवाब सुनिए, आयत 43, काला सआवी इला जबलिन, कहने लगा इन करीब मैं तो पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, यासिमुनी मिनल माई, वो तो मुझे बचा लेगा पानी से। मटीरियलिस्टिक अप्रोच, मादा परस्ती की सोच अल्लाह के नाम पे बनी उस टूटी फूटी कश्ती में सवार होने से रोक रही है कि लो अब्बा ये कश्ती तो टूट जाएगी, ये तो कमज़ोर है, ये तो पता नहीं पुराने मॉडल की है, मैं तो वो ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। नबी का अकीदा देखिए, क़ाला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, कहने लगे आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं, हाँ मगर इल्ला मर रहम, मगर जिस पे वो रहम करे। और अभी बाप बेटे के अंदर ये मुकालमा चल रहा था, वह हाल बैनहुमल मौज, फिर हायल हो गई दोनों के बीच में एक मौज, फकाना मिनल मुगरकीन, और वो डूब जाने वालों में हो गया। ज़रा सा सोचिए, कौन कह सकता है कि हमारी औलाद महफूज है? क्या हज़रत नूह ने अपने बेटे के लिए दुआएं नहीं की होंगी, कोशिशें नहीं की होंगी? लेकिन बुरी दोस्ती माँ बाप की तरबियत को भी बेअसर कर देती है, और इससे ये भी पता चलता है कि 950 साल की तबलीग के बाद भी कोई अल्लाह के सर पे एहसान नहीं करा कि अल्लाह ताला उसकी हर दुआ कबूल करे। हम थोड़ा सा दीन का काम करके फिर हम कहते हैं अब हमारी भी तो बात पूरी हो, अब तो मैंने जी कुरान पढ़ना भी शुरू कर दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब तो मैंने जी पढ़ाना भी शुरू कर दिया, मेरे साथ अब क्यों हुआ? तो इससे पता चलता है कि ज़मीन व आसमान अल्लाह के हुक्म के पाबंद है। जब अल्लाह ने चाहा कि ये सारा कुछ ख़त्म हो, यहाँ आयत 44 में अब ड्रॉप सीन है, वकील यार दो, और कहा गया कि ज़मीन निगल ले अपने पानी को, और आसमान थम जा, पानी खुश्क हो गया, मामला ख़त्म हो गया, और वस्तवत अलल जूदिश, और वो कश्ती जूदी पहाड़ पे जाकर टिक गई, वकील अबो दलिल कौम ज़ालिमीन, और कहा गया कि दूरी हुई उस कौम के लिए जो जालिम कौम थी। अब देखिए कि फिरौन के पानी में डूबने की बात पीछे हम पड़े, बदर के कुएं में बड़े बड़े कुफार की लाशें चली गईं, यहाँ इस कौम का भी हाल यही है। हालांकि पानी के बगैर ज़िंदगी का वजूद नहीं है, वही पानी जो खैर और ज़िंदगी का ज़रिया बना, अगर उस पानी को अल्लाह मौत का ज़रिया बना दे तो मौत है। आज भी देखिए कई बच्चे पानी में डूब जाते हैं, तो इससे पता चला कि ज़मीन और आसमान अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। अब जब बेटे को डूबता देखा तो क्या हुआ? अगला सीन है असल में वो कि जो दिल पे तकलीफ़ और चोट डालता है, और अगर वाकई खुदा न खास्ता कोई ऐसे सदमे से गुजर रहा है तो वो इन आयतों पे गौर करे। आयत 45 से 49 में टॉपिक है बेटे के हक में हजरत नूह की सिफारिश कबूल नहीं की गई। वहाँ किसी का जोर नहीं है, अल्लाह जिसकी सुन ले जिसकी ना सुने। यहाँ अकीदा बना लीजिए कि ज़रूरी नहीं कि नेक बंदे की दुआएं कबूल हों और बद की ना हो। अल्लाह ने इबलीस की दुआ सुन ली जो उसने कहा था मुझे लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन यहाँ बेटे के हक में सिफारिश कबूल नहीं हो रही, और वो क्यों नहीं हो रही? अब यहाँ आपके जहन में अगर सवाल आ गया तो उसका जवाब भी लिख लीजिए, बेटे ने कोशिश नहीं की। देखिए हिदायत एक ऐसी चीज़ है, आप मांगेंगे तो आपको मिलेगी। यहाँ पता चल गया कि अल्लाह अपने नबी की सिफारिश पे भी हिदायत किसी को नहीं देता जब तक कि जिसके लिए दुआ मांगी जा रही है उसके अपने अंदर तलब ना हो। आप किसी के लिए खाना बना सकते हैं, आप उसके सामने लाकर ट्रे में सजा के दे सकते हैं, आप एक चम्मच उसकी तरफ बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मुंह उसको खोलना पड़ेगा। चबाना उसको पड़ेगा। जब बच्चे नहीं खाना चाह रहे होते तब देखिए कि माएँ उनके मुंह में खाना डालती हैं, वो फेंक देते हैं। दूध नहीं पीना तो बॉटल उठा उठा के फेंक रहे हैं। तो हिदायत की तलब के बग़ैर हिदायत नहीं मिलती। बड़ा ही मंजर है जिसके ऊपर वाकई औलादों वालों को तो ख़ास तौर पे बहुत ही रिक्कत महसूस होती है। वनादा नूह रब्बहू, और पुकारा नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को, कहा है मेरे रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था और आपका वादा सच्चा है और आप तो सबसे अच्छे हैं फैसला करने वालों में से, फैसला करने वाले। पीछे बात आई थी ना कि अपने घर वालों को भी डाल दे कश्ती में, उसकी तरफ इशारा है कि अल्लाह मेरा तो बेटा था तो वो क्यों नहीं बचा। काला या नूह, अल्लाह ने फरमाया नूह इन्नहु लैस मिन अहलिक। ज़रा से इस पे गौर कीजिए, ये नहीं कहा वो नाफरमान बेटा या वो गलत कंपनी में आ गया, क्या कहा वो है ही नहीं तेरा। इन्नहु लैस मिन अहलिक, यहाँ पता चलता है कि कुफर और इस्लाम के बीच में हद फासिल है। और यहाँ पता चलता है कि जहाँ अमल पीछे छोड़ दे वहाँ नसब भी काम नहीं आता। इन्नहु अमलुन गैरु सालेहुन, अब अगर ग्रामर को देखे ना तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि वो गलत काम करता था, गैर साले अमल थे उसके, बल्कि कि वो खुद ही गैर साले अमल था। यानी एक्सट्रीम है बात करने में, बस अब मुझसे न सवाल करना उस बात का जिसका आपको इल्म नहीं, वरना मैं आपको नसीहत करता हूँ कि अंतकून मिनल जाहिलीन, कहीं आप भी जाहिलों में ना हो जाएं। अब हजरत नूह को तो अपनी फिक्र पड़ गई कि बेटा तो चले डूब गया, बचे ना बचे, कि अल्लाह मुझसे नबूवत का ये ताज ना छीन ले, इसलिए घबरा गए। काला रब्बी इन्नी आऊज़ु बिका नसलक मा लैसा ली बिही इल्म, कहने लगे कि अल्लाह मैं तो इससे आपकी पनाह में आता हूँ कि मैं आपसे उस बात का सवाल करूँ जिसका मुझे इल्म नहीं है। हाँ अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा, मुझ पर रहम नहीं करेगा, अकुम मिनल खासिरीन, मैं तो खसारा पाने वालों में हो जाऊँगा, बैंक करप्ट हो जाऊँगा। यहाँ से आप देखिए हजरत आदम ने भी यही कहा ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना वइल्लम तग़फिर लना। इससे पता चलता है कि जो इंसान जितना नेक होता है ना उसको उतनी अपनी फिक्र होती है, मैं बच जाऊँ, मैं बख्शा जाऊँ, मेरे गुनाह माफ़ हो जाएं। और औलादों की बातें पीछे, पहले अपनी बात की बात आ गई। अल्लाह सुबहान तआला ने क्या कहा, क़ील या नूह, कहा गया कि नूह इहबित बिसलाम मिन्ना, रुक जा। अब ये कश्ती के रुकने का वक्त है, हमारे इस तरफ से सलामतियों के साथ रुक जाएं। और बरकात इन अलैक, और अब आप पे बरकतें होंगी और उन उम्मतों पे जो आपके साथ हैं, और मुराद ये है कि अब जो आपके साथ लोग हैं और इनके बाद जो लोग आएंगे हम उनको बरकत देंगे। यानी इतने लोगों में से सिर्फ 60-70 लोग बचा लिए गए, अल्लाह के लिए मुमकिन है। जलजला आए, सारा शहर नीस्त नाबूद हो जाए, 60-70 लोग बच जाए, अल्लाह के लिए मुमकिन है। इसलिए हमेशा अल्लाह की पकड़ से डरना चाहिए। तो फरमाया तिल का मिन अम्बाइल गैब, ये गैब की खबरें हैं नबी, जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं और आप तो इनको नहीं जानते थे ना आपकी कौम। बस सब्र कीजिए, इन्नलाकिबत लिलमुत्तकीन, आपको बताया जा रहा है कि इंजाम तो अच्छा होगा मुत्तकीन का। ये आखिरी आयत जो है ना 49, इसमें नबी सल्लम को कहा गया। और ये सारी कहानी अल्लाह के नबी को क्यों सुनाई जा रही थी, आपके लोग आपको झुठला रहे थे। यानी बेसिकली ऐसे जैसे आपके बच्चे को चोट लग जाए ना तो आप उसको बहलाने के लिए स्टोरी सुनाते हैं, फिर आपको तो ऐसा हुआ एक चिड़िया थी फिर ऐसे करती थी ऐसे। और दूसरी बात इन किस्सों में ये थी कि उनका गम सुनकर नबी का दिल हल्का हो जाए। आपको तो अभी 13 साल भी पूरे नहीं हुए और हज़रत नूह को तो 950 साल तक ये बातें सुननी पड़ी, तो दूसरों का गम सुनकर अपना गम कम लगता है। उसके बाद एक और मज़मून जो सूरत हूद में कसरत से आप देखेंगे वो है इस्तग़फार। तो लिहाजा आयत 50 से 52 में अल्लाह ताला की बंदगी, तौबा और इस्तग़फार की बरकात का तस्करा है। कौम है यहाँ कौम आद, अब अगली कौम है। यानी आप ज़रा सा समझ लीजिए कि जो चंद लोग हज़रत नूह के साथ बचा लिए गए फिर वो दुनिया में भड़े। हज़रत नूह को इसीलिए आदम सानी भी कहते हैं, सेकंड एडम। वाई अब वो जो 60-70 लोग थे ना वो बीज बने थे दोबारा लोगों के आने का, क्योंकि पूरी ज़मीन पे तो पानी खड़ा हो गया। और इसी दौरान खाना काबा की इमारत जो ऊपर की थी वो गिर गई, वो पहले से मौजूद थी लेकिन तूफान नूह में ऊपर की दीवारें सारी ख़त्म हो गईं। अल्लाह ने जितना चाहा 6 माह लगे, कितने लगे, पानी खुश्क हुआ, दोबारा एक नई दुनिया बनी। लेकिन जो लोग पिछली कौम में से बचे हुए थे आने वाली नस्लों में उन्हीं की कौम में फिर बिगाड़ आ गया। तो तो अल्लाह ताला ने एक और नबी को भेजा जिनका नाम हज़रत हूद था। तो उसका तذکرہ है वइला आदिन अखाहुम हूदन। और अब देखिए कि नबियों को कौमों के भाई कहा जा रहा है इन आयतों में, और आद की तरफ हमने हज़रत हूद को भेजा। उनका भी बिल्कुल वही पैगाम था जो पीछे हम पढ़ चुके कि अल्लाह के लिए करता हूँ, मुझे तुमसे कोई माल नहीं चाहिए। देखिए दीनदारी और दुकानदारी में बहुत फ़र्क होता है। जो दीन की दावत दे रहा है ना, उसको तो किसी से कुछ नहीं चाहिए। और अम्बिया कराम के ये किस्से बताते हैं कि उन्होंने आकर कोई भाव तो नहीं किया, हमें क्या मिलेगा, परावर मिलेगा, दिन का मिलेगा, फिर पेंशन कब मिलेगी। क्योंकि एक होता है किसी का मिशन और एक होता है किसी का प्रोफेशन, दोनों में फ़र्क है। तो अम्बिया कराम ने जो दावत दी थी ना, वो एज अ मिशन दी थी। ठीक है किसी का प्रोफेशन है, वो उस पर पैसे ले सकता है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड काम होगा। ये काम खुले हाथों से होता है, रात को करें, दिन को करें, सुबह को करें, शाम को करें। आगे हम सूरत नूह पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हज़रत नूह कह रहे हैं अल्लाह मैं तो रात दिन ये काम करता था, लेकिन इनको फ़ायदा नहीं होता था। इस किस्से में जो एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिल रही है वो क्या है, या कौम इस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैही, ऐ कौम अपने गुनाहों पे माफ़ी भी मांगो और अपनी इस्लाह भी करोगे तो अल्लाह आसमानों से तुम पर बारिशें बरसाएगा और तुम्हारी कुव्वत में कुव्वत बढ़ाएगा। लेकिन नहीं मानते मुजरिम बन के तो ऐसा ना करो, वला ततवल्लौ मुजरिमीन। तो यहाँ चूँकि बात है इस्तग़फ़ार की, तो अहादीस में इसके बेशुमार फ़वाद मिलते हैं। चंद नोट कीजिएगा चीज़ें। नंबर एक, तुम पर बरसती हुई बारिश उतारेगा, फिर अल्लाह मालों और बेटों के साथ तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें बागात अता करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। ये सारी चीज़ें हमें सूरत नूह की एक आयत में मिलेंगी। और मल लजिम अल इस्तिग़फ़ार, जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लेता है ना, अल्लाह उसके हर गम को बदल देता है, उसकी ज़िंदगी के अंदर जो कोई तकलीफ़ें परेशानियाँ थी उनको ख़त्म करता है और उनको वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से इंसान ने सोचा नहीं होता। अब देखिए अक्सर तो हमारी ज़ुबान खाली होती है ना, काम करते, खाना पकाते, आते जाते बैठे इस्तग़फ़ार करें, लेकिन कौन सी इस्तग़फ़ार जिसमें अपने गुनाहों का गम लगा हो। ज़ुबैर बिन अवाम से एक रिवायत है कि जो शख्स इस बात को पसंद करता है कि इसका अमालनामा उसे अच्छा लगे, को पसंद करता है, सारे ही करते हैं कि कल जब हम जाएं तो हमें अपना अमालनामा देखकर खुशी हो, तो वो क्या करे, वो कसरत से इस्तग़फ़ार करे। यह सिलसिला तो सहीहा की रिवायत है 2945, तो इस पे अमल करना इंशाल्लाह हमें फ़ायदा देगा। कसरत से इस्तग़फ़ार करें, कसरत से इस्तग़फ़ार करें। इसमें एक बड़ा खूबसूरत वाक़या भी आता है इमाम अहमद बिन हम्बल का। किसी शहर में गए, नई जगह थी तो रात हो गई, तो वहाँ से वो जा नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि मैं एक मेहमान हूँ तो मुझे आज मस्जिद में रात गुजारने की इजाज़त दीजिए। मस्जिद वालों ने अपनी कोई मजबूरी ज़ाहिर कर दी, वो उनको पहचाना ही नहीं असल में ना, कहने लगे नहीं जी इधर तो मैनेजमेंट की तरफ से इजाज़त ही नहीं है तो आप रात नहीं गुजार सकते। अब वो होटल मोटल का तो तसव्वुर नहीं था। वहाँ एक शख्स बैठा था जो नमाज़ पढ़ने आया था, उसने ये बात सुन ली, कहने लगा कि बुज़ुर्ग आप मेरे साथ चलिए, आज की रात आप मेरे मेहमान हैं। कहा ठीक है, उनके घर चले गए। पहले दौर में ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं होती थी जितनी आज के दौर में बन गई। खैर जब वो कहते हैं कि उनके घर गए ना, तो पता क्या चला, वो नान भाई है। उसने कहा कि बस आपको मेरे घर में एक तकलीफ़ होगी कि मैं रात भर काम करता हूँ और वही रोटी और वो जो भी चीज़ें बनती है वो अगले सुबह बेचना होता है, तो आप मेरे साथ सब्र कीजिए, आप यहाँ आराम करें। घर भी छोटा सा था। इमाम देख रहे हैं कि वो शख्स आटा निकाल रहा है, बात कर रहा है, बिस्मिल्लाह के बाद कह रहा है अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, यानी पूरी रात उसकी ज़ुबान पर इस्तग़फ़ार सुनी। जब सुबह हुई तो कहने लगे ये बता कि तू इतनी इस्तग़फ़ार पढ़ता है, कभी तुझे इससे फ़ायदा भी हुआ? उसने कहा मुझे तो इतना फ़ायदा हुआ, मैं तो इतना गरीब था, फाके थे, और जब से मैंने ये सुना कि इस्तग़फ़ार से रिस्क बढ़ता है, अब देखिए रिस्क का टॉपिक है ना, तो इस्तग़फ़ार आ गई, तो मैंने इस्तग़फ़ार किया, अब देखिए अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा काम दे दिया। कहा अच्छा तेरी सारी दुआएं कबूल हुई? कहने के सारी हो गई हैं, बस एक का इंतज़ार कर रहा हूँ। कहा वो क्या? कहने लगे कि मैंने सुना है कि एक फ़लां जगह, यानी उस इलाके से थोड़ा सा दूर था इमाम अहमद, कहते मैंने एक इमाम की शोहरत बहुत सुनी है जिनका नाम अहमद है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि किसी दिन वो मेरे मेहमान बने, मेरे घर में आ जाए। कहने लगे अच्छा तो आज तेरी वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई, मैं ही हूँ इमाम अहमद बिन हम्बल जिसका ये नाम है या लोग ये कहते हैं। तो अब देखिए कि अल्लाह ताला को बंदे के दिल का पता होता है दूसरी एक और भी बात समझ लीजिए, हमारे ऊपर जो भी तकलीफें आती हैं ना, वो हमारे गुनाहों की वजह से आती हैं अमूमन। वमा असाबकुम मिन मुसीबत इल्ला बिमा कसबत अईदीकुम, आगे जहाँ आयत आएगी मैं आपको दोबारा भी बता दूंगी। अब जब तकलीफ आई गुनाह की वजह से और आपने उस पर कर लिया इस्तग़फार, जब इस्तग़फार किया तो गुनाह माफ़ हो गया, जब वो उज़र ख़त्म हो गया तो तकलीफ चली गई। तो अल्लाह करे कि हम अपने गुनाहों को सामने रखते हुए इस्तग़फार करें। कौम ने वही रवैया किया, कौम ने बिल्कुल वही रिस्पॉन्स दिया जो अमूमन अम्बिया कराम को मिलता है। तो आयत 53 से 58 में हज़रत हूद का ऐलान बरात है, यानी इजहार कर रहे हैं कि मेरा अब तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। कहने लगे कालू या हूद, ए हूद। देखिए जो जाहिल कौमें थी ना, वो अपने अम्बिया के नाम लेती थी। सहाबा किराम ने कभी भी नबी सल्लम के सामने बैठकर भी आपको या मोहम्मद नहीं कहा। हाँ, आगे से रुजरात में पढ़ेंगे, बद्दू देहाती गंवार लोग आकर कहा करते थे या मोहम्मद उखरुज इलैना, या मोहम्मद उखरुज इलैना, उनके घर के बाहर के दरवाजे में जाकर खड़े होकर शोर मचाते थे। इस कौम ने भी याहूद कहा। कहने लगे तू इसलिए तो नहीं आया, यानी बिल्कुल वही तकरार का अंदाज़ है कि आप ऐसा क्यों लाए और हमारे बुतों के बारे में आप ऐसा क्यों कहते हैं। तो हज़रत खुद ने जब देखा कि ये तो कौम ऐसी है कि मानने की नहीं, तो फिर अल्लाह ताला से कहने लगे कि अल्लाह मैं इनके साथ नहीं हूँ, इन्नी बरी हूँ मिम्मा तुशरिकून, मैं उससे बेजार और बेनियाज हूँ जो शिर्क तुम करते हो। क्या पता चला कि अगर आपके इर्द गिर्द लोग गलत काम करें और आपके बताने के बावजूद ना रुकें, तो फिर आप उनके साथ नहीं मिलना। आज हमारा मसला पता क्या है, हम पहले रुकते हैं फिर अगले नहीं रुकते, फिर हम उनके साथ शामिल हो जाते हैं। और कभी मजबूरियों के नाम पे, कभी बिरादरी है, ख़ानदान है, अब छोड़ तो नहीं सकते, रिश्तेदारी है। तो पता चला कि जिस चीज़ को अब गलत समझते हैं, प्यार से, इज्जत से, मोहब्बत से, तहजीब के दायरे में रहते हुए अगले को बता दें मौके से पहले, वो नहीं मानते तो फिर आप सॉरी कर लें कि मैं ऐसी जगहों में नहीं जाती। बहरहाल कौम आद के ऊपर अल्लाह का अजाब आता है आयत 59 से 60 में। वतिल का आदुन जहदू भी आयाति रब्बिहिम, ये हैं वो आद। और आद के लफ्ज़ में भी दोबारा का लफ्ज़ आता है आदि, इसी से लफ्ज़ ईद भी है। इन्होंने इनकार किया अपने रब की निशानियों का और रसूलों की नाफरमानी की और पैरवी की इन्होंने हर जब्बार और अनीत की। अल्लाह ने नतीजे में इस दुनिया में भी उन पर लानत डाल दी और क़्यामत के दिन भी होगी। और साथ ही उनका तذکرہ किया कि अला इन आदन कफरू रब्बहुम अला बोदल्ली आदन कौमी हूद। तो क्या पता चला कि कौम आद को अल्लाह की रहमतों से दूरी मिल गई। और इस कौम का मतलब और भी जुर्म है, लेकिन बड़ा जुर्म यही था, शिर्क और रसूल की नाफरमानी।